Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
SBS हिंदी पर मैं हूँ आपके साथ अनीता बरार। ऑस्ट्रेलिया में हर साल लगभग 2000 लोगों को ब्रेन कैंसर होता है। कैंसर ऑस्ट्रेलिया के आंकड़ों के अनुसार 2021 में ब्रेन कैंसर ऑस्ट्रेलिया में कैंसर से होने वाली मौतों का नवा सबसे आम कारण था। अब ब्रेन कैंसर और ब्रेन ट्यूमर ये क्या हैं और कहाँ अंतर है, इसी विषय पर बात की है मेलबर्न स्थित कैंसर विशेषज्ञ ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर भौमिक शाह से।
अनीता जी, जब हम ट्यूमर शब्द यूज करते हैं, इन जनरल उसका मतलब होता है कि कोई लंप या गठान है। नाउ कुछ केसेस में ये कैंसर के कारण होती है और कुछ केसेस में ये कैंसर के बजाय और कोई कारण से भी होती है। सो कॉमनेस्ट रीजन अगर हम सोचे तो ब्रेन में जब हमें कोई लंप स्कैन के अंदर दिखता है तो वो कैंसर के अलावा क्या और हो सकता है। कई बार जो आर्टरीज होती है, धमनियां होती है ब्रेन में, उसका एबनॉर्मल फॉर्म होता है जिसे एन्यूरिज्म कहते हैं, तो उससे भी उस तरह के फीचर्स हमें दिखते हैं पर वो कैंसर नहीं है। जैसे हम इंडिया से सोचे तो काफी कुछ इन्फेक्शन होते हैं वो कई बार ब्रेन तक पहुंचते हैं और वहां पर लंप बनाते हैं। जैसे टीबी है, वो भी ब्रेन में एक लंप बना सकता है। कुछ नॉन इन्फेक्टिव रीजन भी रहते हैं जिसमें ब्रेन में ट्यूमर की तरह दिखता है, जैसे सार्कोइडोसिस करके एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, उसमें भी लंप्स बनते हैं। तो ये जानना जरूरी है कि अगर किसी ने स्कैन किया फॉर एनी रीजन और उसमें कोई लंप दिखा, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो सारे कैंसर के लंप है। नॉन कैंसरस कॉजेस के कारण भी उसमें से लंप हो सकते हैं और जरूरी नहीं है कि ये सारे नॉन कैंसरस, इनफैक्ट मेजोरिटी ऑफ जो नॉन कैंसरस लंप होते हैं वो कैंसर में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो ये डिस्टिंग्विश करना जरूरी है और कई बार उसके लिए डिफरेंट काइंड के स्कैन या फिर बायोप्सी करके डिसाइड करते हैं कि वो कैंसर है या नहीं है।
जी, तो ये कैंसर किसी दूसरे पार्ट से भी पहुंच सकता है और ब्रेन से भी किसी दूसरी तरफ जा सकता है।
तो ये डिस्टिंक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। जो ब्रेन में ट्यूमर होते हैं उसमें ज्यादातर ट्यूमर ब्रेन में शुरू नहीं होते, और कैंसर की बात करते हैं, लेट मी बी प्रिसाइज, ब्रेन में हम जो कैंसर देखते हैं उसमें ज्यादातर कैंसर ब्रेन में शुरू नहीं होते पर शरीर के और किसी ऑर्गन में शुरू होकर वहां पर पहुंचते हैं। यूजुअली कैंसर उस कोशों में ज्यादा होता है जहां पर सेल डिवीजन बहुत फास्ट होता है और ब्रेन सेल्स यूजुअली डिवाइड नहीं करते, तो उसमें ट्यूमर होना कम होता है यूजुअली। सो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जब हम ब्रेन में कैंसर देखते हैं तो वो काफी कॉमन, अगर हम ऑर्गन्स देखें तो कई बार वो लंग कैंसर में से वहां पर पहुंचते हैं, ब्रेस्ट कैंसर में से वहां पर पहुंचते हैं या फिर किडनी के कैंसर में से वहां पर पहुंचते हैं। जब हम कोई भी लंप ब्रेन में देखते हैं तो रेस्ट ऑफ द बॉडी का स्कैन डेफिनेटली करते हैं जिससे हमें मालूम पड़े कि वो प्राइमरी ट्यूमर है ब्रेन का या सेकेंडरी ट्यूमर कहीं और से शुरू के वहां पर पहुंचा है।
जी, ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में ही बात करें तो कोई 2000 के आसपास हर साल ब्रेन कैंसर के केसेस आते हैं, तो सर्वाइवल रेट क्या है?
ये बहुत इम्पोर्टेंट है जानना, क्योंकि हमारे दिमाग में यही रहता है कि ब्रेन का कैंसर है मतलब कि ये जानलेवा है। ब्रेन के कैंसर एक स्पेक्ट्रम में होते हैं जिसमें लो ग्रेड कैंसर भी रहते हैं और हाई ग्रेड कैंसर भी रहते हैं। अगर हम लो ग्रेड कैंसर की बात करें तो जैसे ब्रेन के आसपास की जो परतें होती है, मेनिंजिस जिसे कहते हैं, उसके भी ट्यूमर होते हैं, वो बहुत लो ग्रेड और बहुत स्लो ग्रोइंग रहते हैं और वो इंसिडेंटली यूजुअली स्कैन में दिखते हैं और कई बार सर्जरी करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वी कैन वॉच इट, और कई बार सर्जरी करने से हम उसे क्योर कर सकते हैं। सो एक वन एंड इस तरह के ब्रेन के कैंसर होते हैं। उसके अपोजिट एंड पर हम देखें तो हाई ग्रेड कैंसर्स ब्रेन में होते हैं और सबसे ज्यादा एग्रेसिव जो ब्रेन का ट्यूमर होता है जिसे कहते हैं ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी और GBM फॉर शॉर्ट, उसमें लॉन्ग टर्म आउटलुक्स काफी पुअर रहते हैं। पर अगर हम ओवरऑल देखें अक्रॉस ऑल ब्रेन कैंसर्स तो उनमें 5 ईयर सर्वाइवल के चांस अराउंड 1 in 4 पांच साल तक सर्वाइव कर सकते हैं, दैट इज द एवरेज नंबर. पर अपने लिए वो नंबर इस्तेमाल करने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये स्पेक्ट्रम में जो ब्रेन कैंसर एक पेशेंट को है वो कहाँ पर है, लो एंड पर है या हाई एंड पर है, उसके हिसाब से ये नंबर बदल सकता है.
जी, कैसे पहचाने, किस तरह के सिम्टम्स हैं, क्या लक्षण हैं उनके?
सो ये इस तरह का कैंसर है जिसके लिए कोई स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है. जैसे कुछ कैंसर है जो बाल कैंसर के लिए हम स्टूल टेस्ट से स्क्रीनिंग कर सकते हैं या ब्रेस्ट कैंसर के मैमोग्राम से स्क्रीनिंग कर सकते हैं, ऐसा कोई स्क्रीनिंग टेस्ट ब्रेन के कैंसर के लिए नहीं है. तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज यही है कि कुछ लक्षण ऐसे हैं जिससे हमें कंसर्न हो सकता है कि इसमें ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन कैंसर इन्वॉल्व है या नहीं, उस पर ध्यान दें और जल्दी से जल्दी हेल्थ केयर प्रोवाइडर खास करके अपने जीपी से मिलकर चेक कर सके. कुछ सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो 2-3 तरह के सिम्टम है. एक है जिसमें ब्रेन के ट्यूमर के कारण इरिटेशन अगर ब्रेन में होता है तो दौरे पड़ सकते हैं, जैसे जिसे कन्वर्जन या सीजर कहते हैं. तो कोई भी इंसान को जब कभी भी दौरा पड़ता है तो हम हमेशा ब्रेन का स्कैन करके ये देखने की कोशिश करते हैं कि कोई कैंसर नहीं है. तो ये एक चीज है. दूसरी चीज है कि जो ब्रेन के कुछ फंक्शन है उसमें असर पड़ सकता है, खास करके जैसे स्ट्रेंथ या पावर है, सेंसेशन है, स्पीच है, स्वॉलोइंग है, पर्सनालिटी है. तो ये चेंजेस अगर है, कोई भी सडन चेंजेस या फिर स्लोली इवॉल्विंग चेंजेस, तो यूजुअली ये सारे चेंजेस स्ट्रोक में भी हो सकते हैं पर बहुत सडनली होते हैं. जब ब्रेन ट्यूमर में होते हैं तो ये चेंज बहुत स्लोली इवॉल्व होते हैं, कई बार हमें ध्यान नहीं लगता. पर अगर 2-3-4 हफ्तों से ज्यादा कोई भी सिम्टम रहता है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जीपी से मिलकर उसकी जाँच की जाए. तीसरे प्रकार के सिम्टम ये है कि जिसमें ब्रेन में प्रेशर बढ़ने के कारण हमें हेडेक्स रहते हैं, सिरदर्द या फिर नोजिया, वॉमिटिंग, उल्टी उबके रहते हैं, खास करके अर्ली मॉर्निंग में जिसके कारण आप उठ जाए सुबह और बहुत सीवियर होते हैं. तो अगर ऐसे भी कोई चेंजेस है, परसिस्टेंटली रहते हैं, तो दीज आर डेफिनेटली द सिम्टम्स जिसको इग्नोर न करके अपने जीपी के पास जाके चेक डेफिनेटली करना चाहिए.
जी, इसके रिसोर्सेज भी उपलब्ध हैं
अनीता जी. कुछ चीजें मैं डेफिनेटली एम्फसाइज करना चाहूंगा कि यूजुअली इस कैंसर में सिर्फ फिजिकल नहीं पर इमोशनल और कॉग्निटिव चेंजेस भी रहते हैं. तो हमें बहुत सारे प्रोफेशनल की हेल्प की जरूरत रहती है अपार्ट फ्रॉम डॉक्टर्स. आई विल एम्फसाइज कि फिजियोथेरापिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच पैथोलॉजिस्ट, पैलिएटिव केयर नर्सेस और रिहैबिलिटेशन फिजिशियंस, इन सारों का बहुत बड़ा रोल है किसी को भी जब ब्रेन कैंसर होता है. और दो चीजें मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ जो नाम बहुत कॉमनली मल्टीकल्चरल पॉपुलेशन में नहीं जाने जाते. एक है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, जिनका काम है कि आपकी डिसेबिलिटी के बजाय आप कैसे डे टू डे एक्टिविटी फुल इंडिपेंडेंस से कर पाए, आप किचन में खाना बना सके, खाना खा सके, टॉयलेट यूज करे, शावर कर सके, कपड़े पहन सके, स्टेयर्स चढ़ उतर सके, सबके लिए इक्विपमेंट रहते हैं, ट्रेनिंग रहती है, ये सब काम ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट करते हैं. और दूसरा होता है कि ब्रेन ट्यूमर में कई बार स्पीच और स्वॉलोइंग में प्रॉब्लम होता है, कई बार आप अपने आप को एक्सप्रेस अच्छे से नहीं कर पाते या कई बार आप लिखी हुई चीजें या सुनी हुई चीजें समझ नहीं पाते. उसके लिए स्पीच पैथोलॉजिस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, उसकी जो कोपिंग टेक्निक्स है, उसको कैसे, हाउ टू गेट अराउंड इट, ये ट्रेनिंग बहुत अच्छे से दे सकते हैं. उसके अलावा मैं हाईलाइट करना चाहूंगा एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है ऑस्ट्रेलिया वाइड जिसका नाम है ब्रेन ट्यूमर अलायंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया, BTAA. उन्होंने काफी रिसोर्सेज पेशेंट और उनके केयरर के लिए रखे हैं. ये ऐसी इलनेस है जिसमें केयरर का रोल बहुत बड़ा है और उन्होंने हिंदी और पंजाबी में भी उसके रिसोर्सेज के पेज रखे हुए हैं. सो हमारे मल्टीकल्चरल लिसनर्स के लिए वो काफी यूजफुल हो सकता है. आई वुड जस्ट एम्फसाइज के डोंट हेजिटेट टू आस्क फॉर हेल्प, देयर आर लॉट ऑफ हेल्प रिसोर्सेज अवेलेबल.
एक बात आपसे और पूछना चाहूंगी डॉक्टर शाह, कहा जाता है कि मोबाइल फोन्स इनका जो रेडिएशन है वो ब्रेन सेल्स पर प्रभाव डालता है, तो क्या कुछ ऐसी बातें भी हैं?
मोबाइल टेक्नोलॉजी हमारे साथ अभी कुछ डिकेड्स से है और उसका यूज बढ़ रहा है. सो एवरीबॉडी इज कंसर्न्ड कि उसका कोई हेल्थ पर बुरा असर है या नहीं, खास करके द काफी फोकस इस बात पर है कि उससे क्या ब्रेन का ट्यूमर बढ़ सकता है, क्योंकि हम मोबाइल फोन अपने कानों के पास रख के यूजुअली बात करते हैं
जी।
तो फॉर लॉन्ग टाइम देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट कि वो उसे ब्रेन ट्यूमर हो सकता है कि नहीं। एज ऑफ नाउ जो बॉटम लाइन एविडेंस है उसके मुताबिक कोई कनेक्शन मोबाइल फोन यूज से ब्रेन ट्यूमर के बीच में नहीं है। इसकी रिसर्च जारी है पर सो फार देयर इज नथिंग टू से कि मोबाइल फोन यूज से ब्रेन ट्यूमर बनता है।
जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद देना चाहूंगी डॉक्टर शाह।
थैंक यू।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।
Need a few minutes to reset? Great Minds is a podcast from SBS that guides you through different meditation styles from around the world. Listen wherever you get your podcasts.